अहमदाबाद में प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के एक प्रोफेसर है। उनके पिताजी हमेशा यह बच्चों को कहा करते थे कि आजकल के बच्चे मां बाप की सेवा नहीं करते, बच्चों को मां बाप की बहुत सेवा करनी चाहिए। अलग अलग रूप से सप्ताह में एक बार यह बात जरूर बच्चों को बताते थे। और उनकी मां एक दूसरी बात बताती थी कि मैं कभी भी बच्चों से सेवा नहीं लूंगी, मैं एक सेकंड में शरीर छोड़ दूंगी, मैं बच्चों से कभी सेवा नहीं लूंगी। और सचमुच जब उनका देहांत हुआ तो उनके पिताजी 4-5 साल तक बीमार रहे और बच्चों को खूब उनकी सेवा करनी पड़ी। आमतौर पर महिलाओं को हार्ट अटैक नहीं आता है, परंतु फिर भी उनकी मां को हार्ट अटैक आया और एक सेकंड में उसने शरीर छोड़ दिया, बच्चों से कोई सेवा नहीं ली। तो यह है हमारे विचारों का मन और शरीर पर प्रभाव। लंदन के फेमस जर्नलिस्ट थे, उनके पिता को 60 साल की आयु में आंतों का कैंसर हुआ और यह कैंसर बड़ा डेंजरस माना जाता है। एक दिन जब वह हॉस्पिटल से घर आए तो उन्होंने आते ही कहा कि मैं यह सिद्ध कर दूंगा कि डॉक्टर रॉन्ग है, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि अभी तुम 6 मास से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे, बस 6 मास ही जीना है। तो उनके पुत्र ने पूछा कि पिताजी तुमको कितना जीना है, तो कहते देख मेरी और तेरी मां की उम्र एक जैसी है, तेरी मां से 1 साल ज्यादा जीऊंगा। और सचमुच 91 ईयर की एज में उनकी मां का देहांत हुआ और उनके पिताजी 92 ईयर्स तक जिंदा रहे। तो यह भी हमारे विचारों का प्रभाव है। और एक रिसर्च भी की गई और इस रिसर्च में 80 साल से बूढ़े लोगों को एक स्थान पर ले गए अलग से, वहां उनको 3 सप्ताह तक रखा और 3 सप्ताह के दौरान विभिन्न रूप से उनको यही समझाया गया, उनको यही चिंतन दिया गया, ऐसे ही कर्म कराए गए जैसे कि आप 60 साल के हो। सबको कहा कि जब तुम 60 साल के थे तब कैसे कपड़े पहनते थे, तब कैसे लोगों से व्यवहार करते थे, क्या सोचते थे, हर प्रकार से कोशिश करो कि बस हम सभी 60 साल के ही हैं। और इस प्रयोग की शुरुआत में उनके कई फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स चेक किए गए कि वह कितना गहरा सांस ले सकते हैं, उनकी मसल्स की पावर क्या है, कई बायोकेमिकल टेस्ट भी शरीर में किए गए। और 3 सप्ताह के बाद फिर से उनके ये सब टेस्ट किए गए तो पता चला कि ये लोग जवान बन गए, किसकी आयु 6 साल कम हो गई, किसकी आयु 10 साल कम हो गई। तो इस प्रकार से मन का प्रभाव शरीर पर बहुत ही पड़ता है और इसीलिए थॉट मैनेजमेंट वह स्ट्रेस मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कहते हैं कि आम मानव परिस्थितियों का दास होता है, वह छोटी छोटी बातों में उदास होता है। जो परिस्थितियों से ऊपर उठ श्रेष्ठ कर्म करता है उसी के नाम अमर इतिहास होता है। तो इसलिए सचमुच हमें परिस्थितियों से ऊपर उठना है और मन की अवस्था को ऐसा बनाए कि कैसी भी परिस्थिति हो परंतु हम श्रेष्ठ कर्म करें। अगले सत्र में हमने देखा था कि एक दिन में हम 20,000 से 30,000 विचार करते हैं। और इसके अलावा याद है विचारों के बारे में क्या चर्चा की थी? हाँ, एक सेकंड, हमने आपको 3 पॉइंट बताए थे विचारों का महत्व। जिसको तीनों याद है हाथ उठाओ, सोचो विचारों का महत्व क्या है, इसके तीन पॉइंट बताए थे। किसी को तीनों पॉइंट याद है? अच्छा चलो, दो याद है किसको? एक मिनट, नहीं सो, रुकिए रुकिए, हाथ उठाइए। हाँ, दो पॉइंट किसको याद है? हाँ, विचारों का महत्व क्या है? हाँ, कुछ आपको प्रश्न भी पूछा था। हाँ, और किसी को नहीं याद? अच्छा, क्या बताए थे दो?
Thoughts are the feelings, and the feelings are thoughts, and the thoughts are converted into actions.
Yeah, so
the feelings are also seen as emotions.
अच्छा, नहीं, मतलब एक बात तो ठीक है कि basis of all our feelings, all our experiences is thoughts. सभी अनुभवों का आधार विचार है। और दूसरी बात आपको यह बताई थी कि thoughts are like seeds, विचार वो बीज की तरह है। और तीसरी बात यह बताई थी कि हम जो विचार बार बार करते हैं उसी दिशा में हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब और भी और थोड़े से विचार, जिसको कहते हैं सम थॉट्स अबाउट थॉट्स। तो चौथी बात है, व्हाट इज लाइफ? हाँ, जीवन क्या है बताइए? जीवन क्या है? लाइफ इज जर्नी, गुड। हाँ, व्हाट एल्स? व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ चैलेंज। एक एक बोलिए, सबको सुनने, एक 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 व्यक्ति हाथ उठाइए। हाँ, जीवन जीने की कला है। और क्या है जीवन? हाँ, संघर्ष है। एक सेकंड, एक एक व्यक्ति बोले। अच्छा, आप सुनाइए, क्या है जीवन? हाँ, इन्होंने सुना है। अच्छा, हाँ, डॉक्टर साहब ने सुना है। हाँ, नहीं, सभी बातें सही है, परंतु इन सभी उत्तरों में एक जो उत्तर मुझे बहुत अच्छा लगता है वह है लाइफ इज सीरीज ऑफ चॉइसेस। सीरीज काफी मतलब ना, सारे दिन में आपको चूज करना होता है। जैसे जब इस ट्रेनिंग का भी निमंत्रण मिला तो बहनों को और भी बहुत सेवाएं होंगी। कौन जाता है ट्रेनिंग में है? कुछ बहनों ने सोचा कि नहीं जाने दो, कुछ तो अच्छा होगा, कुछ बोरिंग भी होगा परंतु कुछ अच्छी बातें होगी, चलो हम जाते हैं। तो आपने चूज किया। अभी यहां पर आकर भी आप चूज करते हैं, क्योंकि कुछ लोग चूज करते हैं कि 9:30 है, 5 मिनट पहले पहुंच जाओ तो आगे बैठने को मिलेगा। ऐसे ही हर बात में हमें चूज करना होता है, इसलिए बस ये हम स्वीकार कर ले और ये चॉइस हमारे कंट्रोल में है। हम सफलता को चूज करें या असफलता को चूज करें, डर को चूज करें या निर्भयता को चूज करें, वह हमारे कंट्रोल में है। तो यही पांचवी बात है कि कुछ हद तक, बल 100% नहीं परंतु काफी हद तक हमारे विचार हमारे कंट्रोल में है। आमतौर पर हम क्या कहते हैं कि वो विचार आ गया, या तो मुझे डिप्रेशन आ गया, मैं नर्वस हो गया, परंतु क्योंकि हमने वैसे विचार किए। और जैसे हाथ की मूवमेंट हमारे कंट्रोल में, अगर मुझे 1 घंटे तक हाथ को ऊपर रखना हो, बल दर्द होगा, तकलीफ होगी, परंतु मैं ऐसे कर सकता हूं क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में है। इसी प्रकार कैसी भी परिस्थिति हो उसमें क्या सोचना, वो कुछ हद तक तो हमारे कंट्रोल में है। भल जो हमारे संस्कार बन गए हैं, वह संस्कार के अनुसार भी हम तुरंत वैसा रिएक्शन दे देते, वैसे सोचते हैं, फिर भी चाहे तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो थॉट्स को मैनेज करना है अच्छी तरह से, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति 1 महीने में 1 करोड़ रुपया कमाता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने पैसे का अकाउंट ठीक से रखना पड़ेगा। वो अकाउंटेंट भी रखेगा ताकि उसके पैसे का अकाउंट ठीक से हो। कोई अगर 2000 रुपये कमाता है तो उसको अकाउंट रखने की जरूरत नहीं। तो ऐसे ही क्योंकि हमें इतने सारे विचार आते हैं दिन भर में, तो इसलिए उसका मैनेजमेंट भी ठीक से होना चाहिए। और हम अपने विचारों को 8 प्रकार से बांट सकते हैं कि जो हमें सारे दिन में विचार आते हैं उनको हम 8 हिस्सों में बांट सकते हैं। और ये कौन से है, और साथ साथ क्या विचार हमें करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। इसकी हम चर्चा करें उसके पहले हम एक प्रयोग करेंगे जिससे पता चलेगा कि विचारों में कितनी शक्ति है। हम चाहते हैं कि पांच भाई स्टेज पे आ जाए, कोई भी पांच भाई आइए स्टेज पे, तीन खड़े हो गए और चार और एक भाई खड़ा हो जाए, पांच हो, अच्छा भी ज्यादा हो गए, ठीक आ जाइए पांच लोग, हाँ भले आप रुकिए, हाँ ये चेयर को जरा यहां ले लेंगे, अच्छा लाला भाई आप बैठिए चेयर पे, आप चारों एक कोने में आप यहां आ जाइए, हाँ यहां आ जाइए। अब ये प्रयोग में क्या करना है कि हम देखेंगे कि विचारों के बल से हम लाला भाई का वजन कम कर देंगे। हाँ पहले देखो आप चेक करके देखो, जरा सा उठा के थोड़ा कि इनका वजन आपको कितना फोर्स देना पड़ता है उठाने का, ऐसे नहीं ठेरी ठेरी, आप यहां आ जाइए, हाँ यहां से चार कोने में चार हैं, आप इसको पकड़िए और थोड़ा सा उठा के देखो कितना वजन है यहाँ, बस ठीक है। हाँ अप्रोक्सीमेटली उनको आइडिया आया। अभी आपको सभी को क्या करना है, नीचे राइट हैंड रखना है, ऊपर लेफ्ट रखना है, हाँ एक के बाद एक, राइट फिर लेफ्ट, नहीं राइट फिर लेफ्ट, हाँ राइट फिर लेफ्ट, राइट और थोड़ा डिस्टेंस, टच नहीं करना एक दूसरे को। और हम विचार देंगे कि भी सचमुच हमारे वाइब्रेशंस उनको मिल रहे हैं और उनका वजन कम हो रहा है। लाला भाई आपको भी सोचना है कि मेरा वजन कम हो रहा है, और जब मैं कहूंगा जब मैं कहूंगा, नहीं सुनो ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंट नहीं तो नहीं होगा, कि जब मैं कहूंगा कि वे भी उठाओ, तो आपको क्या करना है, पहले राइट हैंड को लेना है फिर लेफ्ट को लेना है, और जैसे उठाया था वैसे थोड़ा उठा के देखना है कि सचमुच हल्के हुए या नहीं हुए। ओके आराम से पूरा ध्यान दीजिए, पूरा ध्यान अपने हाथों पर दीजिए, आपके हाथों से वाइब्रेशन निकल करके लाला भाई को मिल रहे हैं और उनका वजन सचमुच कम हो रहा है। आपके वाइब्रेशन फुल फोर्स से कॉन्सेंट्रेशन से लाला भाई को मिल रहे हैं और उनका वजन कम हो रहा है, उनका वजन सचमुच कम हो रहा है। उठाइए, लगा 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 कम, देखो सचमुच वजन कम होता है, कई बार तो ऊपर तक उठा लेते हैं लोग, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, क्या सचमुच वजन कम होता है या यह साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होगी, परंतु कहने का भाव कि मन का पावर है, जो माइंड पावर वो फीलिंग देता है। ठीक है आपके कोई प्रश्न हो तो बाद में हम डिस्कस करेंगे, अच्छा बढ़ भी सकता है। अच्छा तो ये एक सिर्फ छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। अब हम देखें कि यह आठ प्रकार के थॉट्स है वो कौन से हैं और किस प्रकार से हमें इन विचारों को मैनेज करना चाहिए। उससे पहले हम एक आइस ब्रेकिंग करेंगे, आप सभी का आइस तो ब्रेक हो चुका है लेकिन फिर भी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए ऐसा करते हैं। यह एक परिस्थिति है कि एक लेडी प्रोफेसर अपने, वो एक सेवन स्टोरी बिल्डिंग में रहती है, तो सातवें मंजिल से वह कूद पड़ती है और जब वो मरने पर है, जब वो मर रही है आखिरी सांस ले रही है, तब वो और किसी का फोन उसे सुनाई देता है, फोन जो बजता है उसका खुद का नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो कि कोई अनजाने व्यक्ति का ही फोन है और वो जब बेल उसे सुनाई देता है तो अपने आप को कहती है कि अरे मैंने बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसे कूद करके आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। तो ऐसा उसने क्यों कहा होगा, जिसने पहले सुना है वो जवाब नहीं दे, जिसने नहीं सुना है वही जवाब दे। हाँ किस इसमें लिखा भी आप पढ़ भी सकते हैं कि लेडी प्रोफेसर सातवीं मंजिल से कूद पड़ती है, आत्महत्या करती है, और जब वो मर रही है तब उसे और किसी स्ट्रेंजर का फोन सुनाई देता है और वो सुन करके वह कहती है कि अरे रे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसे आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। जिन्होंने नहीं सुना है वही जवाब दे। तो बेल से क्या संबंध है, सुनाई दिया, अच्छा इसलिए तो सुनना बंद हो जाना चाहिए था। अच्छा हाँ, और क्या? मेरा काम होगा, और कुछ? हाँ सोचिए सोचिए। हाँ जी सोचिए कुछ। अच्छा नहीं खड़ा फूड अटेंड करती। अच्छा उसका तो फोन नहीं है, लेकिन उसका फोन नहीं है ना। अब ये आमतौर पर कहते हो किसी का फोन एक्सेप्ट कर रही थी, परंतु तो उसका फोन नहीं है, अनजाने व्यक्ति का है। हाँ अच्छा कभी नहीं कर सकेगी। अच्छा वो तो मरने ही वाली है। हाँ जी अच्छा तो इसलिए उसने अच्छा तो अच्छा आ गया वहां आ गया। अच्छा इस परिस्थिति में ऐसा होता है कि एटम बॉम्ब से उस एरिया में पूरा विनाश हो गया है, न्यूक्लियर वॉर हुई और सब लोग मर गए हैं। उसे लगता है कि मैं अकेली ही जिंदा हूं इस इलाके में, या तो इस शहर में, और कोई जी नहीं रहा है, तो दुनिया में कोई नहीं जी रहा है अभी, तो मैं अकेली जी के क्या करूंगी, तो वो भी मर जाती है। परंतु जब उसे किसी का फोन सुनाई देता है तो लगता है अरे और भी कोई जी रहा है, तब तो ये फोन किया किसी ने। तो इसके कारण उसने सोचा कि मैंने गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ जी अच्छा फॉरेन से भी होगा तो ये नहीं, ये नहीं बोला, ये नहीं बोला, यही है तो ये फिक्स है। आप जानते हैं जो सभी ऐसी आइस ब्रेकिंग है उसके आंसर सेम है, अगर कभी आपने सुना हो। अच्छा नहीं नहीं मतलब कि वो लोग मर गए हैं लेकिन फिर भी एक फोन चल रहा है, कोई ना कई बार होता है ना, आप देखते हैं कि सीवियर साइक्लोन होने पर भी, अभी अर्थक्वेक भी हुई तो किसी किसी के चालू हो गए थे, रह गए थे। ठीक है चलो दिस इज ओनली आइस ब्रेकिंग। अब हाउ मेनी थॉट्स वी आर जनरेटिंग। सबसे पहले और सबसे बुरे जो विचार है वह है टॉक्सिक थॉट्स, या तो जहरीले विचार। जहरीले विचार क्या है? ये ऐसे विचार है कि जिनका संबंध गुस्सा, जलसी, हैट्रेट, रिवेंज, डर आदि के साथ है, और इससे संबंधित जो विचार है वह जहरीले। ऐसे जो भी नेगेटिव इमोशंस है जब उससे युक्त विचार होते हैं तो वह जहरीले विचार है, क्योंकि ऐसे विचारों से शरीर में भी बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स निर्माण होते हैं। कहते हैं कि हमारा शरीर एक वंडरफुल फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री है, कि जो हजारों की संख्या में केमिकल निर्माण करता है, और हमारा मस्तिष्क करीब 800 केमिकल्स निर्माण करता है। हो सकता है कि यह तो 6-8 पहले पुराना फिगर है, अभी तक 810 भी हो गए होंगे, क्योंकि वह नए नए केमिकल साइंटिस्ट ढूंढते ही जा रहे हैं। तो इन सभी जो टॉक्सिक केमिकल्स है वह ज्यादा मात्रा में निर्माण होते हैं, और वो उसके कारण हमारे शरीर पर भी उसका जहरीला प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसे विचारों से तो पूरी तरह से मुक्त हो जाना चाहिए कि 1% भी टॉक्सिक थॉट है वह कभी भी रहे नहीं। दूसरे हैं नेगेटिव विचार। नेगेटिव विचार कौन से हैं? कि मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरा यह काम नहीं होगा, मुझे जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, मैं एग्जाम में पास नहीं होऊंगा, इस प्रकार के जो विचार है वह नेगेटिव विचार है। साथ साथ ऐसे भी विचार कि जो विभिन्न परिस्थितियों में कोई डिसएडवांटेजेस को ढूंढ निकालते हैं वह भी नेगेटिव विचार है। एक व्यक्ति था कि जो शेयर ब्रोकर था, जब वह घर आया तो उस दिन बड़ा उदास था। उसकी पत्नी ने बार बार पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने क्यों उदास हो? तो उसने कहा अरे आज तो 2,00,000 का नुकसान हो गया। कैसे नुकसान हुआ? तो कहता है कि जब मैं सवेरे शेयर मार्केट में गया तो मैं सारा कैलकुलेशन लगा के गया था कि आज 5,00,000 का फायदा होने वाला है, परंतु 3,00,000 का ही फायदा हुआ। तो 2 लाख का नुकसान हो गया, तो यह भी नेगेटिव थिंकिंग है कि 3 लाख का फायदा हुआ उसकी उसे खुशी नहीं हुई, या तो उसके बारे में उसने चिंतन नहीं किया, परंतु यह चिंतन किया कि 2 लाख क्यों कम मिले। तो इसे हर परिस्थिति में हम सभी भी करते हैं, हमें एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, परंतु हम डिसएडवांटेज को ढूंढ निकालते हैं और बार बार उसका चिंतन करते रहते हैं। तो ये जो नेगेटिव विचार है, हम पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में भी ज्यादा डिस्कस करेंगे तब भी ये नेगेटिव थॉट्स क्लियर हो जाएंगे। वो नेगेटिव विचारों को भी हो सके तो बिल्कुल हम खत्म कर दें। तीसरे विचार है जिसको कहेंगे वेस्ट थॉट्स। वेस्ट थॉट नेगेटिव नहीं है शायद, वो जहरीले भी नहीं है, उससे शरीर में कोई ऐसे बुरे केमिकल्स निर्माण नहीं होते हैं, परंतु सबसे बड़ी बात वेस्ट थॉट से टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि कहा गया है टाइम इज लाइफ एंड टाइम लॉस्ट इज लाइफ लॉस्ट, और साथ साथ टाइम सभी के लिए एक जैसा है। प्राइम मिनिस्टर के लिए एक दिन 26 घंटे का नहीं होता है, हर व्यक्ति के लिए एक दिन 24 घंटे का ही है, तो उतने समय को हम जितना अच्छी तरह से बिताए उतना ही हमारे फायदे में होगा। कैसे कैसे हम टाइम को वेस्ट करते हैं, या तो वेस्ट थॉट हम जनरेट करते हैं। यहां पर भी आपको रिसेस में फ्री टाइम मिलता है, आप ऐसे ही बैठ करके कुछ सोचने लगते हैं, घटना 10 साल पहले हुई या तो और कोई बात के बारे में जिसका कोई ताल्लुक नहीं है इस ट्रेनिंग के साथ, या तो आपको जो डे टू डे एक्टिविटी करनी है उसके साथ, तो वो भी वेस्ट थॉट है। आपस में बैठ करके गपशप करना कि जिसका कोई ध्येय नहीं है, जिसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो वह भी वेस्ट थॉट है। और क्योंकि हम सभी वेस्ट थॉट करते हैं, इसलिए जो एडवर्टाइजिंग कंपनियां हैं उनको बहुत बड़ा फायदा होता है, और शहरों में भी जरूर ऐसा होगा। बंबई में हम देखते हैं कि जो सबर्बन ट्रेन है उसमें बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट लगी होती है, क्योंकि कंपनी को पता है कि बोरीवली से चर्चगेट आदमी जाएगा 1 घंटा उसे लगना है, और मेरी एडवर्टाइज के सामने बैठेगा तो कम से कम 10 बार तो जरूर पढ़ेगा। तो इसके कारण वह भी वास्तव में वेस्ट थॉट है, हमको कोई फायदा नहीं है, कंपनी को जरूर फायदा है कि वो प्रोडक्ट हम खरीद करेंगे। तो इसलिए इस प्रकार से हम स्वयं ढूंढ निकालें कि कैसे कैसे हम वेस्ट थॉट सारे दिन में जनरेट करते हैं कि जिसका डे टू डे एक्टिविटी के साथ भी संबंध नहीं। उदाहरण के रूप में आपको कुछ खरीदना है और उसके लिए आप स्कैनिंग करिए तो अच्छी बात है कि भी आप ढूंढो कहां यह प्रोडक्ट अच्छी मिलती है, क्योंकि वह आपको उस चीज को खरीदनी है। पर जो न कुछ आपको खरीदना है और कोई लक्ष्य नहीं है और सोचना, वह भी वास्तव में वेस्ट थॉट है। एंड एवरी थॉट टेक्स अवे सम एनर्जी, यानी समझो कि ऐसे ही हम सोच रहे हैं कुछ नहीं हुआ, उसमें भी शक्ति जाती है। कहते हैं कि विचारों में भी मैग्नेटिक पावर है, तो जितना हम सोचेंगे उतना जो हमारा एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल भी नीचा जाता जाएगा। चौथे हैं नेसेसरी विचार, कि हमें कई बातों के बारे में सोचना ही पड़ेगा कि जो आवश्यक है। आपको सवेरे तैयार होना है, या तो फिर ऑफिस में जाना है, ट्रेन पकड़नी है, आपको रिजर्वेशन कराना है, बहुत सारी बातें सारे दिन में कि जो डे टू डे एक्टिविटी के लिए आवश्यक है, तो वो आवश्यक विचार करने ही पड़ते हैं। फिर भी जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज है उसको हम ठीक से देखें तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जिसके लिए काफी सोचना नहीं पड़ता है। यहां तक प्रोफेशनल एक्टिविटीज की, डॉक्टर्स जब पेशेंट को भी चेक करते हैं बहुत कुछ उन्हें सोचने की आवश्यकता नहीं, वो डेली उन्होंने ऐसा किया ही है। इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, नेसेसरी थॉट भल करें परंतु कम से कम करें। इवन मैं तो ये चाहता हूं कि हमारी दिनचर्या को भी ऐसा बनाए। आज ब्रह्मा कुमारीज में आके हम सबको एक बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है। क्या एडवांटेज हुआ है कि आज दुनिया वाले आप देखो उनको जो सवेरे कपड़े पहनने होते हैं तो काफी टाइम लगता है कि भी कौन से कलर का पहनूं, ये शर्ट है तो पैंट मैचिंग होगा या नहीं, फिर ढूंढते हैं कि भी कहां पर मैचिंग पैंट है, ऐसे उनको बहुत कुछ ढूंढना पड़ता है। बोलो नेसेसरी एक्टिविटी, ये नहीं कहेंगे कि वो नेसेसरी नहीं है, लेकिन उसमें वो ज्यादा समय लेती है, विचारकों की शक्ति लेती है, परंतु हमारे लिए बहुत अच्छा है कि भाई व्हाइट कपड़े हम पहनते हैं तो इजीली निकाल के उसको पहन लो। तो ऐसी अरेंजमेंट और सभी एक्टिविटीज में भी करिए, सारे जीवन में। हम एक तो इतने इजी बने कि भी बहुत सोचना नहीं पड़े, दूसरा और भी हमारी दिनचर्या को ऐसा बनाए कि कम सोचे उतना अच्छा है। और अब क्या करें कि भी जैसे हम पैदल कर रहे हैं कि भी उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, तब दो कार्य करने चाहिए, क्योंकि आपके सामने जो ऑडियंस होगा सभी बीकेज नहीं है। तो इसलिए पहला स्टेप तो उनको यह बताओ कि इस एक्टिविटी में जब आप भोजन कर रहे हैं, पैदल कर रहे हैं, तो जागृति के साथ ही करिए। आज हम क्या करते हैं, भी पैदल कर रहे हैं भाई और कुछ सोच रहे हैं, या तो खाते समय क्या करते हैं, मैक्सिमम पता नहीं रिसर्च हुई है कि नहीं, 70-80% लोग टीवी देखते हैं खाते खाते, समझते जैसे हम दो काम कर रहे हैं, परंतु दो काम नहीं हो रहा है, कई लोग तीन काम सोचते हैं, फोन पे भी बात कर रहे हैं। तो यह कोई तीन कार्य नहीं है, उल्टा आप जो एक इंपॉर्टेंट चीज खाना खा रहे हैं वो कुछ पेट्रोल नहीं है, आप कितना खाते हो वो आपके माइंड पर बहुत डिपेंडेंट है, कब आपको संतुष्टि होगी उसका आधार भी आप कैसे खाते हो इस प्रक्रिया पर है। तो इसलिए इन सब एक्टिविटी को एक तो जागृति के साथ करिए, जिसको कहते हैं डू योर थिंग्स विथ अवेयरनेस, कि क्या हो रहा है, शरीर में क्या फीलिंग हो रही है, चबाते समय मुझे कैसा टेस्ट आ रहा है, वो जागृति के साथ हम करेंगे तो भी वह एक प्रकार से मेडिटेशन है। और जैसे जैसे आप मेडिटेशन की विधि सीखे तो वह अवेयरनेस भी बनानी चाहिए। और हम जो आपको मेडिटेशन की विधि सिखाने जा रहे हैं जिसे राजयोग कहते हैं, इस विधि की यह विशेषता भी है कि हम कार्य करते समय भी कुछ हद तक उस कॉन्शियसनेस को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि राजयोग यह कॉन्शियसनेस ट्रेनिंग है। इस उदाहरण के रूप में अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं, परंतु ऐसे प्रवचन तो मैंने बहुत सारे दिए हैं, तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं कि अभी नेक्स्ट क्या बोलना होगा। तो इस समय भी अगर मैं यह चिंतन करूं कि आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ पीसफुल लाइफ एनर्जी विथ इन, और मैं वो जो पीसफुल बीइंग हूं वह औरों से बात कर रहा हूं कि जो सभी भी पीसफुल बीइंग्स है, जो सभी भी लाइफ एनर्जी है, उस भाव से अगर मैं बोलूं तो सचमुच ऐसे बोल पाऊंगा, और उसके द्वारा जो शांति का अनुभव होना चाहिए वह शांति का भी अनुभव होगा, मेरा ऑरा भी और पावरफुल बनता जाएगा। तो ऐसे नेसेसरी थॉट जरूर करें, परंतु जितने कम हो सके उतना अच्छा है। अब है राइट थिंकिंग। ये राइट थिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले सत्र में भी हमने थोड़ा सा राइट थिंकिंग के बारे में देखा, तो इसका हमने एक स्पेशल पूरा लेसन ही रखा है राइट थिंकिंग पर, क्योंकि लोग समझते हैं पॉजिटिव थिंकिंग मुश्किल है, इसलिए राइट थिंकिंग को हम अलग से नेक्स्ट लेसन में राइट थिंकिंग लेंगे। नेक्स्ट है पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया है, कहा गया है, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि सचमुच पॉजिटिव थॉट्स क्या है। यह नेगेटिव से अपोजिट है कि थॉट्स ऑफ सक्सेस, थॉट्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, गुड हेल्थ, बेटर रिलेशनशिप, दे आर ऑल पॉजिटिव थॉट्स। साथ साथ पॉजिटिव थॉट्स वह भी है कि जो हर परिस्थिति में हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एडवांटेज होता है, उस एडवांटेज के विषय में चिंतन करना वह भी पॉजिटिव थिंकिंग है। और हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि सिस्टमैटिकली अगर हमें पॉजिटिव थिंकिंग करना हो तो हम कैसे पॉजिटिव थिंकिंग करें। कि कैसे यह जो प्रैक्टिकली उसे प्रैक्टिस हम किस प्रकार से करें, तो इसके बेसिक स्टेप्स की हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात जो कही कि एडवांटेज को ढूंढ निकालना। कैसी न भयानक परिस्थिति हो, परंतु हर परिस्थिति में कोई एडवांटेज जरूर होता है। लोकमान्य टिळक को 6 साल के लिए जेल की सजा हुई और उनका कोई कसूर नहीं था, उन्होंने सिर्फ देशभक्ति के कुछ आर्टिकल्स लिखे थे और उसको लेकर के अंग्रेजों ने उन्हें यह सजा दे दी और बहुत कड़ी कंडीशंस रखी कि आपको महीने में एक ही रिलेटिव को मिल सकते और कोई आपको मिल नहीं सकता है, आप कोई किताबें पढ़ नहीं सकते, पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमें लगेगा कि ये ठीक है तो ही हम आपको पढ़ने देंगे, नहीं तो पढ़ने नहीं देंगे। तो वहां पर जब लोकमान्य टिळक रहे और 1 मास के बाद जब उन्होंने पहला पत्र लिखा अपने घर पर, तब पता है क्या लिखा था? उस पत्र में लिखा कि यह स्थान ध्यान करने के लिए बहुत अच्छा है, मैं सारा समय ध्यान करता हूं। तो नेगेटिव विचार नहीं किया कि देश को आजाद करना है, क्यों मुझे अंदर बंद कर दिया, परंतु उस परिस्थिति का भी उन्होंने पूरा पूरा लाभ लिया और एडवांटेज को ढूंढ निकाला। ऐसे ही एक महिला थी कि जिसे कैंसर की बीमारी हुई और 6 साल के बाद उसने अपना अनुभव लिखा। इन दौरान उसके बहुत सारे ऑपरेशन हुए, रेडिएशन लेना पड़ा, कीमोथेरेपी लेनी पड़ी, और जब उन्होंने 6 साल के बाद अपना अनुभव लिखा तो उस अनुभव में बताया कि कैंसर होने के बाद मुझे बहुत सारे फायदे हुए। सबसे पहला तो यह फायदा हुआ कि पहले मैं टाइम को वेस्ट कर रही थी, मैं समय का महत्व नहीं जानती थी, परंतु जब से कैंसर है पता नहीं कल मैं जिंदा रहूंगी या नहीं, तो इसलिए हर समय को मैं अच्छे से अच्छी तरह बिताने की कोशिश करती हूं। दूसरा उन्होंने बताया कि पहले मैं सोचती थी कि मैं तो अबला हूं, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, परंतु इन दौरान ये जो सारे ऑपरेशन आदि हुए तो मुझे भी लगता है, मेरे परिवार के सदस्य भी बताते हैं कि तुम्हारा मनोबल तो बहुत स्ट्रांग है, तुम तो बहुत पावरफुल नारी हो। तो इस प्रकार मुझे बहुत सारे फायदे हुए। तो हर परिस्थिति में हम ये ढूंढ निकाले कि क्या एडवांटेज होता है। दूसरी बात यह भी है, पॉजिटिव थिंकिंग अर्थात कि हो सकता है कि कोई आपको फायदा न हुआ हो, परिस्थिति से बहुत सारी हानियां ही हुई हो, फिर भी यह सोचना कि यह जो हानि हुई वह कम हुई, हो सकता है कि भी इससे भी बहुत ज्यादा बड़ी हानि हो जाती। मिस्टर नायर वह टेलर थे और बंबई की ट्रेन के नीचे उनका एक्सीडेंट हो गया और जो लेफ्ट हाथ था वह कट गया। जब वह हॉस्पिटल में थे तो भी बड़े स्टेबल और शांत थे। उनकी पत्नी जो खूब निराश हो रही थी, उनको वह कहते थे कि कोई निराशा नहीं करो, कोई दुख नहीं करो, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, अभी भी मेरा राइट हैंड है वो तो ठीक है, मैं इससे टेलरिंग का काम कर सकता हूं और कमाई कर पाऊंगा, तुम कोई चिंता नहीं करो। दूसरी बात उन्होंने यह भी कही कि जैसे ही मैंने होश संभाला और मुझे पता चला कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तो सबसे पहले यही विचार आया कि भगवान का शुक्रिया मानना चाहिए कि मेरी जान नहीं चली गई, ये तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। तो ऐसे हर परिस्थिति में सोचना कि जो भी होता है उसमें कोई ना कोई इनडायरेक्ट, या तो जो लॉस हुआ वो लॉस भी कम हुआ है। तीसरी बात कि कई परिस्थितियों में ऐसा होता है कि जब वह समस्या आपके सामने आती है तो बहुत बड़ी समस्या है, नुकसान भी कोई कम नहीं है, बहुत ज्यादा नुकसान है, परंतु फिर भी आप सभी अनुभवी है। अगर आप देखेंगे कि हर घटना में 6 मास के बाद या तो 6 साल के बाद आपको कोई ना कोई फायदा होता है, आप में से अधिकतर लोगों ने मेरा उदाहरण सुना होगा कि जो मैं हमेशा सुनाता हूं और एक फैक्ट है, लोगों को भी अच्छा लगता है। और यही उदाहरण अगर आपको सुनाना हो तो क्या करना चाहिए, एक बहन ने बहुत हंसाया लोगों को कि यहां पर एक ट्रेनिंग, मधुबन में एक ट्रेनिंग हो रही थी, उसमें पहले दिन मैंने उनका लेक्चर लिया था, फिर दूसरे दिन वो बहन ने लेक्चर लिया। तो उन्होंने कहा कि देखो गिरीश भाई ने कल आपका सेशन लिया था ना, उनका मैं आपको एक्सपीरियंस सुनाती हूं, लेकिन उनको बोलना नहीं है। तो लोग खूब हंसे कि ये क्या बोलने जा रही है, क्योंकि उनको बताना नहीं है अनुभव। फिर उसने मेरा अनुभव सुनाया कि जब ये कॉलेज में पढ़ते थे तब से उनके सर के बाल झड़ने लगे। तो जो उनके बाल झड़ने लगे तो बड़े नर्वस होते थे, बड़ा टेंशन होता था, और कोई चिंता नहीं थी, बस यही चिंता होती थी। और बाल नए बने उसकी कोई दवाई नहीं है, परंतु उन्होंने देखा कि जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और मेडिकल प्रैक्टिस करने लगे तो उससे बहुत एडवांटेज हुआ। पहले तो वो सोचते थे कि 6 मास तक मेरे पास कोई पेशेंट नहीं आएगा, परंतु 1 महीने में ही अच्छे खासे पेशेंट आने लगे। तो उनका विचार चलता था कि क्यों मेरे साथ इतने सारे पेशेंट आते हैं। फिर थोड़े दिन के बाद ही उसका राज पता चला, जब एक मरीज ने कहा कि डॉक्टर साहब लगता है कि आप हमारे एरिया में सबसे सीनियर है। स्टेट बना दे वास्तव में, एक कहे बिलीफ सिस्टम कि जो भी होता है, भले आज मुझे सब कुछ डार्क नजर आता है कि भी जीवन खत्म हो गया, अभी कोई फायदा नहीं, परंतु फिर भी यह सोचो कि हो सकता है 6 मास के बाद, 4 साल के बाद इस परिस्थिति में भी कोई ना कोई जरूर फायदा होगा। अच्छा नहीं वही पूरा हो गया कि उसका राज पता चला कि इतने सारे पेशेंट क्यों आ रहे हैं। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो शुरू शुरू में बहुत सारे पेशेंट आते थे, मेरे पेरेंट्स को भी आश्चर्य होता था कि अरे चलो लड़का बहुत कमाने लगा। हा? तो किसी ने मुझे सामने से कहा कि डॉक्टर इट सीम्स यू आर सीनियर मोस्ट इन अवर एरिया, इसलिए हम आपके पास आते हैं और आप पर हमको ज्यादा विश्वास है। तो जी क्या किसका हाँ वो तो प्रॉब्लम भी होता है कई बार। एक बार मैं गाड़ी में जा रहा था तो उसने मेरी टिकट देखी तो बोलता है नहीं तुम गलत टिकट में आए हो, तुम्हारी आयु 35 इयर्स की नहीं हो सकती है। वो सबको पूछता है कि इसकी आयु कितनी होगी बोलो, तुम किसकी गलत टिकट में आए हो। ठीक है अच्छा जो है वही लिखा था। इसमें भी एक एडवांटेज है कि भी जल्दी हम सीनियर सिटीजन बन जाएंगे।
अच्छा, ट्रेन में कोई
पकड़ेगा। अच्छा फोर्थ है जो पॉइंट कि भल ये सब बातें भी ना हो कि आपको कोई एडवांटेज नहीं है, फ्यूचर में भी एडवांटेज नहीं है, फिर भी पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, ये सोचे कि इससे क्या सीखने को मिला। इन सारे लेक्चर से भी शायद आप बहुत कुछ सीख नहीं पाएंगे, जो लोग ध्यान देंगे उन बातों को रिपीट करेंगे वह शायद कुछ सीख पाएंगे, परंतु जब हमारे सामने समस्या आती है, कुछ लॉस होता है और उससे जो बात हम सीखते हैं वह जीवन भर याद रहती है। तो इसलिए यह सदैव पक्का बना लो कि कुछ सीखने को भी मिला परिस्थिति से तो वह भी बहुत बड़ी बात है। 5वां पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग का कि भी पॉजिटिव थिंकिंग अर्थात क्या कि हम सदैव यह सोचे कि मैं एक यूनिक व्यक्ति हूं। हर प्रकार से कहा जाता है कि हमारे सर का एक बाल भी इस दुनिया में यूनिक है, हमारे जैसा और किसी का नहीं है। तो जब इतनी यूनिकनेस हमारे में है तब फिजिकली मेंटली इमोशनली हमारे सामने जो परिस्थितियां आती है वह सभी भी जरूर यूनिक होगी। तो जब हम यूनिकनेस को सोचेंगे, अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे किसी के साथ कि भी इनको जीवन में ये बात मिल गई मुझे नहीं मिली, ये सोच के जब हम डिस्टर्ब होते हैं, यहां तक अपने पार्टिसिपेंट्स को कहो कि अपने बच्चों को भी पड़ोसियों के बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करो, दे आर यूनिक, और उनको उनके यूनिक वे में डेवलप होने दो, उसके लिए आप सपोर्ट करो ताकि उनकी जो इनहेरेंट टैलेंट्स है वो टैलेंट सारी उभर आए। और छठा है पॉजिटिव थिंकिंग, अर्थात कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना, क्योंकि वर्तमान में अभी जो मैं कर रहा हूं उसी में जीना है। और सचमुच हम फ्यूचर या तो पास्ट में जी ही नहीं सकते हैं, हम फ्यूचर के बारे में डर सकते हैं या पास्ट के बारे में सोच करके गिल्ट फीलिंग कर सकते हैं, परंतु वास्तव में जी नहीं सकते। रियलिटी इज ओनली प्रेजेंट, तो सदैव प्रेजेंट में जीना वह भी पॉजिटिव थिंकिंग है। और सातवीं बात है जिसको मैं कहता हूं SML का अलग मतलब है, ये SML का मतलब है कंसिस्टेंसी इन शॉर्ट टर्म मेंटल लॉजिक, कि जो हमारा मेंटल लॉजिक होता है आमतौर पर दिन में भी कई बार चेंज होता जाता है, वह हम सेम नहीं रखते हैं। किस प्रकार से कि एक व्यक्ति था, वो असिस्टेंट मैनेजर था, अपने जनरल मैनेजर को बहुत नफरत करता था, उनको अच्छा नहीं लगता था, हमेशा वो क्रिटिसाइज करता था जनरल मैनेजर को। परंतु एक दिन सवेरे सवेरे उसका दूसरा एक फ्रेंड आया और वो उसको कहने लगा कि अरे आज अपने जनरल मैनेजर तुम्हारे प्रोजेक्ट से बहुत खुश है, नहीं उसको बहुत अच्छा लगा कि तुमने कितना अच्छा प्रोजेक्ट है कंप्लीट कर करके दिया। तो जब ये सब बातें सुनी तो उसका मेंटल लॉजिक चेंज हो गया, वो सोचने लगा कि बॉस कितना अच्छा आदमी है, मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी है उसमें उसको जरूर बुलाऊंगा। तो उसने ये मेंटल लॉजिक को चेंज कर दिया कि जो गलत है, वास्तव में तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हर बात में हम सोचे कि भी जो भी लोग हैं जैसे हैं अच्छे ही है। और व्यक्ति कभी सेम नहीं होता है, वह चेंज होता रहता है। तो इसके कारण भी ऑलवेज हम हर व्यक्ति के प्रति, हर परिस्थिति के प्रति एक सेम मेंटल लॉजिक की स्टेट बनाए कि जो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो वह भी एक हिस्सा है पॉजिटिव थिंकिंग का। और आठवीं बात है जो कहते हैं कि सी सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए यह नहीं सोचो कि यह क्यों हुआ, यह किसने किया, परंतु तुरंत यह सोचो कि इसका समाधान क्या है और इस समाधान में मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। सबसे पहले तो मुझे प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं, ये प्रॉब्लम हो गया, सेंटर पे भी कोई समस्या आ गई, तो आज हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को कुछ उल्टी सीधी बात बता करके प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स को कुछ कह देंगे या तो दूसरे साथ में रहने वाली बहन है उसको कुछ कह देंगे, इससे भले आपका अच्छा लगेगा, आपको शायद थोड़ा सम्मान मिलेगा, परंतु अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो अपने आप पे पक्का कहे हम कि प्रॉब्लम को बढ़ाना तो बिल्कुल नहीं, और मेरा जो भी योगदान हो सके कि जिससे ये प्रॉब्लम का समाधान हो तो वह समाधान मुझे करना, चाहे मुझे पहले पूछा गया था या नहीं गया था, मेरे साथ भले बुरा व्यवहार हुआ था, यह नहीं सोचो कि बदला लेने का अच्छा मौका है, उसने मुझे सताया था ना, अभी मैं भी देखती हूं, तो ये बदला नहीं लेना है कि भी ये समस्या खड़ी हुई है उसको कैसे हमें सॉल्व करनी है, तो सचमुच आपको क्रेडिट मिलेगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी आपको बता सकते हैं कि कैसे जब हम सॉल्यूशन को देखते हैं तो बहुत बड़ा फायदा होता है। तो अब ये आठ बातें हैं, जब भी टेंशन सामने आए, कोई ऐसी घटना हो जाए, तो सोचो कि आठ में से एक काम तो मुझे करना है, एक कर सकते, दो तीन भी कर पाएंगे आप, जो भी या आठों पॉइंट को सामने ला करके सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूं, तो वह एक पॉजिटिव अप्रोच होगा। और कितने हुए, सातवां है ये, सातवां है नहीं, राइट थिंकिंग हो गया ना, जो भी डिटेल में डिस्कस नहीं किया हमने, दिस इज सेवन, नहीं राइट थिंकिंग आपने लिखा नहीं, ठीक है मैं रिपीट कर देता, सेवेंथ है, सेवेंथ है, हाँ तो सेवेंथ है एलिवेटेड थॉट्स, भी पॉजिटिव थॉट्स से भी आगे है वह एलिवेटेड थॉट्स। और अभी आप देखेंगे कि ऐसे कोर्सेस में हम डायरेक्टली आध्यात्मिकता नहीं सिखा सकते, जो हम कॉलेजेस के सिलेबस भी बना रहे हैं उसमें अगर डायरेक्टली लिखेंगे कि आत्मा का परिचय देंगे तो काट देंगे उसको, परंतु ऐसे इनडायरेक्टली जब जब कहीं कहीं मौका मिले तो थोड़ा सी स्पिरिचुअल बातें हम उनको इंट्रोड्यूस कर दें और ऐसे ढंग से करें कि सचमुच उनकी बुद्धि में बैठ जाए। तो पॉजिटिव थॉट्स से भी एलिवेटेड थॉट्स हायर है, कि जो हमने देखा कि टॉक्सिक थॉट्स वो जहरीले केमिकल्स निर्माण करते हैं, परंतु ये जो एलिवेटेड थॉट्स है वो अच्छे केमिकल्स निर्माण करते हैं, कि जिससे स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है, अंदर हमारे में एनर्जी निर्माण होती है। और ये एलिवेटेड थॉट्स कौन से? ऐसे थॉट्स विच आर रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, इट इज रिलेटेड टू योग। कहा गया है कि हम लोग आमतौर पर यह सोचते हैं कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग हैविंग ऑकेजनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, कभी कभी हम प्रेयर कर लेते हैं, थोड़ा कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, परंतु वास्तविक बात बिल्कुल इससे अपोजिट है, कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ऑकेजनल ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो यह स्टेज बननी चाहिए कि सारे दिन में जितना हो सके स्पिरिचुअल थॉट्स हमारे हो। वेल, कभी कभी हमें फिजिकल थॉट्स भी करने पड़ते हैं, या तो जैसे कहा नेसेसरी थॉट्स करने हैं, उसमें भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को हम साथ में जोड़ दे तो हम लंबा जी भी सकेंगे, अच्छा भी जी सकेंगे। आज भी बायोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो हमारे शरीर की उम्र है वो कितनी है, 150 ईयर्स। तो मैं संभव नहीं, फिर भी जितना हो सके हमें एलिवेटेड थॉट्स करने चाहिए। इसमें आप चाहे तो और भी कोई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को जोड़ दें। हाँ जी, नहीं ये तो थॉट्स का मतलब मेडिटेशन का तो हुआ ही है, कि जब मेडिटेशन करते हैं तो डॉक्टर गुप्ता ने भी बताया था कि कैसे आपके जो लैक्टिक एसिड का लेवल है वो बहुत ही कम हो जाता है। नहीं, तो इस प्रकार से मेडिटेशन पर एक्सपेरिमेंट हुए हैं, एंड अल्टीमेटली इफ यू डू दिस यू विल बी इन अ मेडिटेटिव मूड इवन वाइल डूइंग योर डे टू डे एक्टिविटीज, सो दोज केमिकल्स वुड डेफिनेटली चेंज। नाउ दिस इज फाइनल 8 नंबर। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इसे स्वीकार भी नहीं करेंगे, परंतु अगर आप पूरा ध्यान देंगे तो आपको यह एहसास होगा कि दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट थिंग। शुरुआत में ये बताते हैं कि शायद आप इस बात को कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, परंतु अनुभव यह कहता है कि कई बार यह जीरो थॉट का जो हम डिस्कशन करते हैं वही लोगों को बहुत अच्छा लगता है। एक रोटरी क्लब में प्रोग्राम था कि जब मैंने ये बातें बताई तो फिर अंत में सभी कहने लगे कि दिस वॉज बेस्ट, आपने जो जीरो थॉट की बात कही विच वॉज वेरी गुड, वी शुड प्रैक्टिस। तो ये क्या है? सबसे पहले तो हम ये देखें, मैं आपको कुछ परिस्थितियां बताता हूं और देखिए कि भी उस परिस्थिति में क्या हम विचारों को कम कर सकते थे या तो जीरो थॉट कर सकते थे। उदाहरण के रूप में आपको 2 दिन 2 अलग अलग डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है। पहले दिन जब आप डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए जाते हैं और उसके वेटिंग रूम में बैठते हैं तो पाते हैं कि वेटिंग रूम बिल्कुल बेकार है, 10 साल से वहां कोई कलर नहीं किया गया है, फर्नीचर भी ठीक नहीं है, यहां वहां कचरा भी पड़ा है, तो आप क्या सोचते हैं? कि ये बेकार डॉक्टर होगा, इससे मैं ट्रीटमेंट लूंगी तो शायद ये मुझे जिंदा रखेगा कि नहीं पता नहीं। तो ऐसे एक विचार चला कि ये कितना गंदा है इसका इंटीरियर, तो दूसरा भी चला, तीसरा, चौथा, इसे चलता रहता है। ऐसे ही आप दूसरे दिन जब दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो परिस्थिति बिल्कुल इससे विपरीत है। आप पाते हैं कि शहर के बेस्ट आर्किटेक्ट ने उसके इंटीरियर को डिजाइन किया है, सब चीजें इतनी नीट और क्लीन है, तो फिर से हम सोचने लगते कि बहुत बड़ा डॉक्टर होगा, शायद इसकी फीस बहुत ज्यादा होगी। यह अलग अलग प्रकार के एक के बाद एक विचार आने शुरू हो जाते हैं। परंतु अपने आप को यह कहो कि भी मैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए मुझे जाना है, उसके इंटीरियर का इवेल्युएशन करने नहीं जाना है, तो भी जैसा है मुझे सिर्फ वहां बैठना है, उसके बारे में कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो विचार कम होंगे या तो प्रैक्टिस करते करते कुछ सेकंड भी जीरो थॉट की स्टेज होगी। दूसरा हम एक उदाहरण देखते हैं कि आप यहां पर बाहर शांतिवन में खड़े हैं और पाते हैं कि एक बहुत पुरानी फियाट गाड़ी है वहां से पास होती है, 10-20 साल पुरानी। तो आप सोचते कैसा आदमी है, इतनी पुरानी गाड़ी चलाता है, गाड़ी भी बदले नहीं कर सकता है। फिर थोड़ी देर के बाद आप जाते हैं, वहीं पर खड़े हैं और दूसरी एक बहुत अच्छी ब्रांड न्यू मर्सिडीज गाड़ी गुजरती है, तो भी आप सोचते हैं कि बहुत पैसे वाला होगा, नहीं बहुत करप्शन करके पैसा कमाता होगा। तो इसे एक विचार किया तो दूसरा तीसरा है। अब सोचिए इसके बदले हम उसी रोड पर एक कैमरा रख दे और ये दो गाड़ी गुजरेगी तो कैमरा क्या करेगा, उसका फोटो लेगा, वो सोचेगा नहीं। तो ऐसे ही जब तक जहां भी हो सके जितना संभव हो, कई बार सोचना भी पड़ता है, परंतु अगर आवश्यकता नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उसका ओनर कौन है, तो उस बात के बारे में अगर हम सोचे ही नहीं, चीज जैसी है वैसी उसको एक्सेप्ट कर ले, कहे कि एक साक्षी का भाव अगर क्रिएट कर ले कहीं परिस्थितियों में, तो भी ये जीरो थॉट की स्टेज है वो आ सकती है। और थोड़ा सा अगर हम डेप्थ में जाते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है, विचारों का अगर आप ओरिजिन देखेंगे तो क्या है। अगर सचिन भाई मुझे एक पेन है वो गिफ्ट में देते हैं, अगर मैं ये सोचता हूं कि भी ये क्या 10 रुपए की पेन मुझे गिफ्ट में दी, कितना बेकार आदमी, मुझे क्या समझता है, तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा और नेगेटिव विचार आएंगे। या हो सकता है कि उन्होंने बहुत एक्सपेंसिव पेन है वो प्रेजेंट की, और फिर से मैं अगर सोचूं देखो इन्होंने इतनी एक्सपेंसिव पेन मुझे दी तो जरूर मेरा उनसे अच्छा रिलेशन है, मुझे भी उनको फेवर करना चाहिए, कुछ काम करवाना चाहता है मेरे से, जैसे एक के बाद एक विचार चालू रहेंगे। परंतु अगर ये स्टेट हो, गिफ्ट इज गिफ्ट, उन्होंने दी उनको थैंक यू कह दिया, अगर उपयोग में आती है तो उपयोग की, नहीं आती है तो और किसी को दे दी ताकि उसके काम में आए वह चीज। ऐसी स्टेज जहां भी संभव हो अगर हम बनाने लगे तो एक तो बहुत एनर्जी है, वह एनर्जी की बचत होगी, और साथ साथ जैसे जैसे जीरो स्टेज बढ़ती जाएगी तो जब हम मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे तो वह मेडिटेशन में भी डीप एक्सपीरियंस होने में हमें बहुत मदद मिल सकती है। तो यह हाँ जी इनोसेंट थॉट, हाँ तो कर्मातीत अवस्था शायद आगे चल के बनेगी, परंतु अभी एक साक्षी भाव का ही तो स्टेज हम बनाए कि जो आप कहीं कॉलेज में जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, तो वह लोग भी हो सकता है तो उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी 8 प्रकार के विचारों के आधार से आप अपना ही एक चार्ट बनाइए कि सारे दिन में मुझे कौन से विचार आए, और फिर जो ज्यादा विचार आए उसको कैसे मैं कम करती जाऊं, ताकि थॉट्स का जो सही मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट हो जाए, जिसको कहते हैं। अभी आप कहेंगे कि भाई तो विचार आते हैं, टॉक्सिक थॉट आते हैं, कैसे कम करें, अंडरस्टैंडिंग के द्वारा भी, ये ट्रेनिंग में जो सभी बातें आपको बताई गई है वो अंडरस्टैंडिंग से भी ये कम हो सकते हैं। साथ साथ और एक मैं आपको बताना चाहता हूं जिसको कहते हैं थॉट स्टॉपिंग टेक्निक, विचारों को स्टॉप करने की टेक्निक। और ये टेक्निक विशेषतर तो जब बहुत नेगेटिव विचार चलते, कई बार कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, किसी ने टीका कर दी, हमारे से कोई लॉस हो गया, कहीं हमें सम्मान नहीं मिला, जब दिन भर हमारे में वह बुरे विचार चलते ही रहते हैं, तब स्पेशल ये टेक्निक को यूज करना चाहिए। उसमें क्या करते हैं कि आप घड़ी के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप को कहो कि अभी 30 सेकेंड मुझे बहुत बुरा सोचना है, वो शुरू हुआ ना सोचो कि बहुत डर लग रहा है, ये तकलीफ हो रही, इसने मुझे ऐसा कह दिया, बहुत खराब आदमी ये है वो है, जो आता हो वो सोचो, ज्यादा कम नहीं करो, और फिर फिक्स कर दो कि 30 सेकेंड पर जब वो आए तो आपको एक तो अपने आप को स्टॉप, और विचारों को स्टॉप करके पॉजिटिव में ले जाने की कोशिश करो। हो सकता है कि जब बहुत पावरफुल नेगेटिव विचार आते हैं तो स्टॉप करने से स्टॉप नहीं होगा, तो कहते कुछ आप अपने आप को सजा भी दे सकते हैं, ऐसे कहो स्टॉप, या तो ऐसा कहते रबर बैंड लगाओ रबर बैंड को जोर से खींचो, उसको लगने दो। तो इससे देखा गया बहुत जब पेशेंटों को जो नेगेटिव विचार आते हैं, वह एक्सट्रीम नेगेटिव थॉट्स भी उनके कुछ तो कम हो जाते हैं और फिर उन थॉट्स को वह लोग डाइवर्ट भी कर पाते हैं। और अब ये थॉट मैनेजमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भाई आगे ले गया पूरा, रिवर्स चले जाओ। थॉट मैनेजमेंट में जो बहुत ही पावरफुल बात है वह है कि मॉडल ऑफ कॉन्शियसनेस को हम समझें। और इसमें अभी एक स्टेप बाय स्टेप हमने लिया है कि मॉडल ऑफ कॉन्शियसनेस ले लो नहीं, लेकिन वो पूरा साथ में आ गया हम आप हाँ बस ऐसे रहना, जस्ट लिव इट, ऑटोमेटिक आ रहा है, क्लिक पे नहीं है। अच्छा, क्लिक पे आ जाए तो बहुत अच्छा है। वैसे बनाया है कि एक एक स्टेप बाय स्टेप आता है ताकि हम उसको एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, जैसे भी हो, तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियसनेस के कई हिस्से के आधार पर हम इस मॉडल को समझ सकते हैं। और ये जो कॉन्शियसनेस का मॉडल बनाया है वह आध्यात्मिक ज्ञान को भी लिया गया है साथ में, और साइकोलॉजी की जो अलग अलग थियोरीज है और साइकोलॉजी की भिन्न थियोरियों को भी साथ में मिला करके इसे बनाया गया है, कि जिसमें जो सबसे बाहर का हिस्सा आप देख रहे हैं वो सबसे बाहर का हिस्सा है जिसको कहते हैं कॉन्शियस फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस, जो हमारी चेतना है उसमें जिसके बारे में हम जागृत है। अभी आपको अगर कहे कि सारे जीवन में क्या क्या हुआ आप याद करो, तो आप कितना याद कर सकेंगे? जन्म से लेके अब तक जो भी घटनाएं हुई है उसमें से कितना याद कर सकते? कितना? 1%, 5%? कितना कर सकते? हाँ, कितनी भी देर लो, भले सारा दिन ले लो, तो भी तो भी कहेंगे कि भी मैक्सिमम 10% हम ध्यान, दो चार दिन भी आप सोचते रहो कि भी क्या जीवन में हुआ, परंतु जो भी घटनाएं हुई है वो सभी हमारे कॉन्शियसनेस में स्टोर्ड है। यहां तक साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि न केवल हमारे जीवन में, सारी दुनिया में जो घटनाएं हुई है वह सभी भी हमारे कॉन्शियसनेस में स्टोर्ड है, परंतु वो डीपर लेवल पर गई है। तो जो सेकेंड स्टेज है वह है सबकॉन्शियस, और सबकॉन्शियस वो फील्ड है कि जो जो मेमोरीज डीप गई है परंतु कभी कभार हमें याद आ जाती है, हमेशा याद नहीं आती है। जैसे आप आराम से रिलैक्स कर रहे हैं आपको कुछ याद आ जाएगा, किस व्यक्ति को आपने देखा तो वैसे ही चेहरे का दूसरा व्यक्ति आपको याद आ जाता है। ऐसे जो पास्ट की मेमोरीज कभी कभी हमें याद आती है जो सबकॉन्शियस में है, और वह जब ऊपर कॉन्शियस की ओर आती है तब वह घटनाएं हमें याद आ जाती है। और यह सबकॉन्शियस भी काफी पावरफुल है, ये ऑलमोस्ट 45% जितना है, और उससे भी डीप लेवल पर कुछ मेमोरीज गई है। वो डीप लेवल है अनकॉन्शियस कि जो घटनाएं हो सकता है पास्ट बर्थ की भी हो, इस बर्थ की न भी हो, परंतु वह भी सभी कॉन्शियसनेस में स्टोर्ड है, और वह भल हमें याद नहीं आती है परंतु फिर भी वह अनकॉन्शियस मेमोरीज भी कॉन्शियस को इन्फ्लुएंस करती रहती है, उसको कंट्रोल करती रहती है। और यह जो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों को साथ में अगर हम मिलाए तो वह है हमारे संस्कार्स, इंप्रेशंस, पर्सनालिटी ट्रेड्स आदि, कि जो कॉन्शियस को बार बार कंट्रोल करते रहते हैं। और ये कैसे पता चले? हम सबको अनुभव है, अगर रोज आप 6 बजे उठते, माफ करना आप तो नहीं उठते, आपके सामने जो ऑडियंस होगा वो 6 बजे उठता होगा, तो उनको बोलो कि उदाहरण के रूप में अगर आप रोज 6 बजे उठते हैं और एक दिन आपको प्लेन पकड़ना है तो रात को 2:30 बजे उठने की जरूरत है, आपने दो दो अलार्म भी लगा दिए हैं कि भाई ठीक से एक अलार्म अगर मिस हो जाए तो दूसरा तो बजेगा, परंतु जब आप उठते हैं तो पता चलता है कि बहुत देरी हो गई। क्या हुआ? दोनों अलार्म बजे थे परंतु अनजाने में आप बंद करके फिर से सो गए। तो यहां पर क्योंकि आपके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में वही मेमोरी थी कि रोज 6 बजे उठना है, तो इसलिए इतना जल्दी उसने उसे आपको उठने नहीं दिया और आपके कॉन्शियस को खींच करके रखा। ऐसे ही इस सारे स्ट्रेस मैनेजमेंट और राइट थिंकिंग कोर्स के बाद शायद आप सोचेंगे कि अभी गुस्सा नहीं करना है, कुछ भी हो जाए आज से मैं किस पर भी क्रोध नहीं करूंगा। हो सकता है कि 2-3 दिन सब कुछ ठीक चले, फिर एक दिन छोटी सी भी घटना हो जाए तो आप तुरंत गुस्से में आ जाते हैं। तो फिर से भी क्या हुआ कि सबकॉन्शियस ने आपको पुश किया, आपके संस्कारों ने आपको पुश किया, जो आप करना नहीं चाहते थे वह आपने कर डाला। तो इसलिए जो जीवन में परिवर्तन लाना है वह आवश्यकता या सबकॉन्शियस में हमें परिवर्तन लाना है, संस्कारों में परिवर्तन लाना है। और वो परिवर्तन किस प्रकार से ला सकेंगे कि जो कॉन्शियस फील्ड है वह है माइंड एंड इंटेलेक्ट, मन और बुद्धि कॉन्शियस में है और संस्कार है वह सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में है। अब मन और बुद्धि वह जैसे कहीं भी मन, सबसे पहले तो मन एक नियम पर काम करता है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ फ्री विल ऑल्सो, कि भी वो कुछ भी सोच सकता है, मन को कोई बंधन नहीं, कहीं भी जा सकता है। परंतु मन को बांधने वाली भी बुद्धि है। बुद्धि जो है इंटेलेक्ट वर्क्स ऑन अ लॉ ऑफ चॉइस, बुद्धि जो है वह प्रेफरेंस देती है कि भाई ये व्यक्ति अच्छा है ये व्यक्ति बुरा है, वह प्रेफरेंस जो देती है वह बुद्धि देती है। यह काम करूंगा तो मुझे फायदा होगा, यह काम करूंगा तो मुझे नुकसान होगा, उसका जो प्रेफरेंस है वह बुद्धि देती है। और बुद्धि क्या है, बुद्धि वेइंग स्केल जैसी है, जब हम वजन करते हैं तो इसे बुद्धि हर घटना का वजन करती है, माफ करती है कि ये कितना अच्छा है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और मन का इसे तो कोई कंट्रोल नहीं, परंतु बुद्धि मन को कंट्रोल करती है। और बुद्धि पर जो इफेक्ट है वह इफेक्ट तर्क की होती है, जो भी बात हम लॉजिक से सोचते हैं तर्क से विचार करते हैं तो उसकी इफेक्ट बुद्धि पर होती है। इसलिए जब भी कोई घटना हो जाती है अगर आप तर्क से अपने आप को समझा देते हैं कि भी इसका भाव यह था या ऐसा था, तो तर्क से समझ में आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं होगा। आप भले उदाहरण नहीं देना, परंतु बीकेज है इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं कि एक बार एक बहुत बड़ा फंक्शन था कि जिसमें एक सेंटर के 5 इंपॉर्टेंट भाई थे, उनमें से 4 भाइयों को स्टेज पर बुलाया गया और वो 5वें को नहीं बुलाया। तो जब उसको नहीं बुलाया तो बड़ा डिस्टर्ब रहा, 6-7 दिन तक उसने सुनाया कि इतना डिस्टर्ब हुआ कि क्या मेरा कोई स्थान नहीं है, मैंने अपना सारा जीवन दे दिया, सब कुछ बाबा की सेवा में लगा दिया, मेरा कोई स्थान नहीं है। वो सोचता रहा, बहनों से भी कुछ बात नहीं की। फिर 5वें-6वें दिन के बाद उसने सोचा कि बहन को भी तो जरा मैं पूछ लूं कि भी क्यों ऐसा उन्होंने किया, क्या बात थी, उनके रिलेशन तो अच्छे ही थे। तो उसने एक बार प्यार से बहन को पूछा तो बहन ने फिर वो सारा इवेंट सुनाया। उन्होंने कहा और ये सत्य बात थी कि जब वो प्रोग्राम हुआ तब यह सोचा गया था कि किसी को भी स्टेज पे नहीं बुलाएंगे, सिर्फ बहनें ही स्टेज पे बैठेगी, कोई भाई स्टेज पे नहीं बैठेगा। सिर्फ एक भाई की जो वास्तव में तो नया ही था, परंतु उसने बहुत बड़ा सहयोग दिया था वो भवन बनाने के लिए, तो उसको हम बिठाएंगे और किसी को भी नहीं बिठाएंगे। परंतु जब वो भाई को कहा कि आप स्टेज पे बैठो, उसने कहा मैं अकेला नहीं बैठूंगा, नहीं आप वो दूसरे का भी नाम दिया कि इसको भी मेरे साथ साथ बिठाओ तो मैं बैठ सकता हूं। तो बहनों के सामने समस्या हो गई कि जो दूसरे को बिठाएंगे तो दूसरे 2 थे वो बुरा मानने वाले लोग थे कि भी हम भी इसके बराबर है, इसको बिठाए तो हमको भी बिठाना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि भी दूसरे 2 को भी बिठा देते हैं। और जो भाई को नहीं बुलाया गया वो कुमार था, और वो तो अथक जैसे सेवाधारी कुमार होते हैं ऐसा वो सेवाधारी कुमार था, और जो दूसरे लोग थे वो बिजनेसमैन गृहस्थी थे तभी। तो जब उसके सामने क्लेरिफिकेशन हो तो उसका पूरा टेंशन खत्म हो गया, कि भाई ये प्रोग्राम ही नहीं था, अगर प्रोग्राम होता और बुलाना था तो शायद बहने मेरा नाम भी सोचती। तो अभी क्या किया, बुद्धि ने इसको स्वीकार की। जब ये क्लेरिफिकेशन मिला तो बुद्धि ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये दिस वॉज द रीजन, कोई पर्पसफुली बहने मुझे पीछे गिराना नहीं चाहती है या मेरा ध्यान नहीं रख रही है, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे हर घटना में बुद्धि की तर्क की इफेक्ट होती है। और अभी सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस या तो हमारे संस्कार, संस्कार न सोचते हैं न निर्णय करते हैं, नहीं ना कोई कुछ नहीं करते, तो संस्कार क्या करते हैं? वास्तव में संस्कार है उसमें जो भी चीज आपने भरी है वैसे बस काम करते रहते, जो बातें आपने जो ऑर्डर्स दे दिए हैं वो ऑर्डर के अनुसार बस वो काम करते रहते। तो इसलिए संस्कारों में जो भी हमने भरा है या तो जिस रूप के हमने संस्कार बनाए हैं वैसा ही हम करते रहते। तो अब आवश्यकता है इन संस्कारों को परिवर्तन करने की। और संस्कार तर्क की इफेक्ट संस्कारों पर नहीं होती है। जब आप तर्क से सोचते हैं तो वह सिर्फ कॉन्शियस फील्ड में ही रहता है, सबकॉन्शियस तक जाता ही नहीं, क्योंकि सबकॉन्शियस इज लाइक एन अनएजुकेटेड लेबरर, एक अनपढ़ मजदूर हो उसको आप तर्क से समझाओ तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं, आप पॉलिटिकल लीडर्स को भी क्या देखते हैं, इतनी भावना से बोलेंगे कि लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे ही संस्कारों का भी है कि अगर फीलिंग्स के साथ कोई बात कही जाए तो वह संस्कारों का हिस्सा बन जाती है। जब आपका मन और शरीर रिलैक्स है तब भी जो आप सजेशंस देंगे वह भी सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाती है। और इसलिए जब हम ध्यान करते हैं या तो रिलैक्सेशन करते हैं उसके अंत में स्ट्रेट फॉरवर्ड सजेशन हमें संस्कारों को देना है कि जहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें समाई हुई है, कि उसमें नेगेटिव इंप्रेशंस भी है और साथ साथ पॉजिटिव इंप्रेशंस भी है। नो इज डिफरेंट, सबकॉन्शियस वह है कि जो कभी कभी सरफेस पर आता है, परंतु अनकॉन्शियस इतना डीप है कि वो कभी सरफेस पर आता ही नहीं, रेयरली 1 in 10 million इट माइट कम, नहीं दोनों मिला के 45% कहो, दोनों के अप्रोक्सीमेटली 45% सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। अब ये जो थर्ड है, जो फोर्थ आया, वह है सुप्रा कॉन्शियस। सबसे पहले उसके पहले की हम बात देख ले, हाँ लेकिन भी देखा कि अभी सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में आप देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की इंप्रेशन है, नेगेटिव बातें भी है, हेट्रेट गिल्ट ऐसे ही पेशेंस, पॉजिटिव बातें भी है और नेगेटिव बातें भी इसमें है। वह एक ब्लॉक्स के रूप में वहां पर समाई हुई, जैसे कंप्यूटर में हम प्रोग्राम दे देते हैं वैसे ही यह भी प्रोग्राम है। और वह सदैव कॉन्शियस को कंट्रोल करते हैं। कॉन्शियस में कोई इंप्रेशंस नहीं है, इंप्रेशंस है वह सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में ही है। और अब उसको चेंज करना है तो हमें पॉजिटिव थॉट्स देना होगा। यदि हेट्रेट है तो हम पॉजिटिव देखिए, मुझे मेरे में दया का भाव आ रहा है, मैं उस व्यक्ति को चाहता हूं, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसे उससे अपोजिट, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स को ही सबकॉन्शियस की इफेक्ट होगी। अगर हम ये कहेंगे कि मुझे डर नहीं लगेगा तो उल्टा डर लगेगा, परंतु हमें यह कहना है कि मैं बोल्ड बन रहा हूं, मैं कॉन्फिडेंट बन रहा हूं। यू वॉन्ट टू कवर? हाँ, तो इट मे बी डिफर, हाँ सम आर इन सब कॉन्शियस, सम आर इवन इन अनकॉन्शियस। नहीं नहीं, यही होता है, ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता। सपोज मेरे अनकॉन्शियस में फियर है, प्रेम भाई के अनकॉन्शियस में शांति हो सकती है, ऐसे कोई भी बात, एनीथिंग कैन गो। या जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, सिर्फ यह है कि जो अनकॉन्शियस में है वह सरफेस पे कभी नहीं आता है। अच्छा, तो अब ये चेंज करने के लिए ऐसे एफर्मेशंस देने हैं, एंड यू हैव टू रिपीट दोज एफर्मेशंस। एक बार कहा कि भी मैं निर्भय बन रहा हूं, निर्भय नहीं बन जाएंगे, दिन में 5 बार कहो और उसी बात को रिपीट करो अलग अलग रीति से। अगर 2 मास तक उसे रिपीट करते रहेंगे तो वो ब्लॉक है वो इरेज हो जाएगा वहां से, और आप सचमुच बिल्कुल निर्भय बनेंगे। ऐसे जो भी बात को चेंज करनी, एटलीस्ट फॉर 8 वीक्स थ्राइस इन अ डे keep on giving those affirmative affirmations कि मैं ऐसा बन ही गया हूं, ऐसा मैं बन रहा हूं. इसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाते, अदरवाइज दिस विल टेक अ होल लेक्चर. अभी फाइनल बात जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूं, और आप भी इसको एम्फोसाइज करिए, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू कि जो आज साइकोलॉजिस्ट भी नहीं बताते हैं, और हम उनको स्पिरिचुअलिटी के नजदीक ले जा रहे हैं, वह है द फील्ड ऑफ सुप्रा कॉन्शियस. सुप्रा कॉन्शियस इज अ माइन्यूटेस्ट फील्ड, इट मे बी इवन लेस देन 1%, बट सुप्रा कॉन्शियस इज लाइक अ गोल्ड माइन. नहीं, वो सोने की खान है. सुप्रा कॉन्शियस इज अनलिमिटेड ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी. सुप्रा कॉन्शियस हैज अनलिमिटेड साइकोलॉजिकल पावर्स, इन्फिनिट क्रिएटिविटी. परंतु सिर्फ यह बात है कि सुप्रा कॉन्शियस वो सोया हुआ है. सुप्रा कॉन्शियस वास्तव में एक फरिश्ता है, परंतु यह फरिश्ता सोया हुआ है. अब सुप्रा कॉन्शियस से आपको काम कराना हो तो क्या करना पड़ेगा? उस फरिश्ते को जगाना पड़ेगा. बस आपने अगर फरिश्ते को जगा दिया तो सब काम वो अपने आप करेगा, आपको कुछ फिर ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है. परंतु उसे हम सुप्रा कॉन्शियस को कैसे जगाएंगे? क्योंकि जब रिलैक्स होते हैं तो भी हम सिर्फ अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस तक ही जाते, डीप नहीं जा सकते. सुप्रा कॉन्शियस तब एक्टिवेट होता है जब हम टोटली अपने शरीर को भूल जाते हैं, 100%. जब हम शरीर को भूल जाते हैं तब सुप्रा कॉन्शियस एक्टिवेट होता है. और इसके लिए एक बहुत अच्छा जो तरीका है कि जो हम स्वयं अभ्यास से कर सकते हैं, वह है मेडिटेशन की प्रैक्टिस. क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हमारा लक्ष्य ही होता है कि हम पूरा शरीर भान से परे जाए, वी गो बियॉन्ड फिजिकल कॉन्शियसनेस. भल जब एक अच्छा व्यक्ति भी मेडिटेशन करता है तो हर वक्त वह शरीर भान से परे नहीं जाता है, परंतु 15 दिन में एक बार, मास में एकाध बार वह शरीर भान से बिल्कुल परे चला जाता है, और तब सुप्रा कॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता है. और जब भी सुप्रा कॉन्शियस अगर एक्टिवेट अच्छी तरह से हो गया तो हमारे में से प्रत्येक व्यक्ति जो भी आज महान आत्माएं बने हैं उनसे भी अच्छे बन सकते हैं. अब अगर हम एक का कि कैसे इस कॉन्शियसनेस को हम ऑपरेट करें, सुप्रा कॉन्शियस जो मैंने कहा कि वह एक फरिश्ते के समान है, और जो हमारा कॉन्शियस है वह एक चिड़िया के समान है. एक कहानी जो आप सभी ने भी सुनी है इसके साथ इसको लिंक करते हैं कि एक गांव में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई, अच्छे लोगों की और बुरे लोगों की लड़ाई. अच्छे लोग थोड़े से ही थे और बुरे लोग बहुत ज्यादा थे, तो वो बुरे लोगों ने आग लगा दी, आग लगा दी और अच्छे लोगों को पकड़ पकड़ के उसमें डालने लगे. थोड़े से 2-4 लोग थे जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, दूसरे अधिकतर लोग तमाशा देखते थे क्योंकि डर रहे थे. और जब यह सारी चीज चल रही थी तो तब एक चिड़िया भी थी, जो चिड़िया नजदीक से अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी लेकर के उस आग पर डाल रही थी. तो वो करती जाती थी और आसपास में और भी सारे पंछी इकट्ठे हो गए थे, सब हंसने लगे कि ये पागल हो गई है, कि ये क्या बूंद बूंद से आग बुझने वाली है. तो जब चिड़िया ने सुना तो उसने कहा कि मुझे भी पता है कि ये बूंद बूंद से आग बुझने वाली नहीं है, परंतु एक दिन इतिहास लिखा जाएगा, और जब इतिहास लिखा जाएगा तब 3 प्रकार के लोगों के नाम होंगे. एक तो आग लगाने वालों के नाम, एक तमाशा देखने वालों के नाम, और तीसरा आग बुझाने वालों के नाम. तो मैं चाहती हूं कि मेरा नाम है वह आग बुझाने वालों की लिस्ट में आए, और वो अपना काम करने लगी. तो उतने में वहां से एक फरिश्ता गुजरा. ये सारी लड़ाई देख के उसका हृदय द्रविरण नहीं हुआ, उसने सोचा होता रहता है, ये तो झगड़ा होता ही है, मेरा क्या जाता है. परंतु जब उसने देखा कि ये चिड़िया इतनी मेहनत कर रही है, बूंद बूंद लाके यहां डाल रही है, तो उसका हृदय द्रविरण हो गया और उसने बारिश कर दी और आग बुझ गई. तो ऐसे ही कॉन्शियस को चिड़िया का काम करना है, अपना पुरुषार्थ करते रहना है, और हम बस सब सुप्रा कॉन्शियस को एक्टिवेट करें तो जीवन में महान परिवर्तन आ सकता है. ओम शांति. Thank you.